नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण नारी शक्ति का अधिकार। विपक्षी दलों से ऐतिहासिक कानून को राजनीतिक रंग न देने की अपील की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, परिसीमन के बाद किसी भी क्षेत्र की सीट कम नहीं होगी। दक्षिणी राज्यों को 66 लोकसभा सीट मिलेंगी। 2027 की जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज से मकान सूचीकरण और गणना शुरू। भारत और ऑस्ट्रिया ने खाद्य सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन सहित रक्षा सहयोग तथा आतंकरोधी उपायों पर आशय पत्र और अन्य महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायल सीमा में अगले दो दिन लू चलने की आशंका। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का मैच जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की 50% आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और नीति निर्माण में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना समय की मांग है। श्री मोदी ने आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को भी अहंकार पूर्ण भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वे भारत की महिलाओं को कुछ दे रहे हैं, बल्कि ये उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि समूची राजनीतिक व्यवस्था दशकों से इस अधिकार को महिलाओं से छीनने की सामूहिक रूप से दोषी है और इसलिए ये विधेयक प्रायश्चित का एक आवश्यक उपाय है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से इस ऐतिहासिक विधेयक को राजनीतिक रंग न देने की अपील की।
आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे।
श्री मोदी ने कहा कि एक विकसित भारत केवल बुनियादी ढांचे, रेलवे या आर्थिक संकेतकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं की समान भागीदारी भी आवश्यक है।
विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं है। हम चाहते हैं कि विकसित भारत, जिसके नीति निर्धारण में 7 अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी केवल संख्या की बात नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि लगभग 6,700 ब्लॉक पंचायतों में से लगभग 2,700 पंचायतों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीट की संख्या में कमी आने की विपक्ष की आशंकाएं खारिज कर दी। श्री शाह ने कहा कि प्रस्तावित ढांचा दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि सुनिश्चित करता है। श्री शाह ने कहा कि वर्तमान में 543 सीट में सदन में दक्षिणी राज्यों की संख्या 129 है, जो बढ़कर 195 हो जाएगी।
दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। माननीय, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% होगी, तो शक्ति कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है।
चर्चा के दौरान कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण का प्रावधान सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। उन्होंने कहा कि यह कदम जमीनी स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।
कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया तो ये समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार हैं।
चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है। इससे पहले विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयकों को पेश करते हुए श्री मेघवाल ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि सरकार महिलाओं को राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसे सरल बनाया जाना चाहिए और परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर आधारित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
संसद के विस्तारित बजट सत्र का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए गए, जिनमें संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। इन विधेयकों का मकसद नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आधार पर पूरी की गई परिसीमन प्रक्रिया के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को लागू करना है। वर्ष 2023 में संविधान 106 संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में लगभग 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थीं। आनंद कुमार के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकानों का सूचीकरण और गणना का काम आज शुरू हो गया। यह अभियान 15 मई तक चलेगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि पहली बार शुरू की गई स्वगणना को उत्साहजनक समर्थन मिला है। लगभग 12 लाख परिवारों ने सफलतापूर्वक अपनी ऑनलाइन जानकारी जमा की है। यह अभियान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड के क्षेत्रों में आज से शुरू हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
मैं फसल की नहीं NPS पेंशन की बात कर रहा हूँ।
NPS पेंशन?
हाँ, आज ही NPS में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करो।
बुढ़ापा सुरक्षित?
हाँ भाई, NPS भारत सरकार के PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें आज से पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से। बुढ़ापे में पेंशन की पक्की गारंटी के लिए NPS जरूरी है।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर ने आज नई दिल्ली में बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों ने खाद्य सुरक्षा पर एक समझौता ज्ञापन और सैन्य मामलों में सहयोग तथा आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह पर आशय पत्रों सहित कई समझौतों का आदान प्रदान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया अब संरचना, नवाचार और स्थिरता के क्षेत्र में विश्वसनीय साझेदार रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री स्टॉकर की ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगी।
चांसलर स्टॉकर की यह यात्रा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में नई ऊर्जा लाएगी। हम ऑस्ट्रिया की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को जोड़कर पूरे विश्व के लिए रिलायबल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करेंगे। हम डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और बायोटेक्नोलॉजी में भी अपनी पार्टनरशिप को सुदृढ़ करेंगे।
ऑस्ट्रिया के चांसलर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट की। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी रही। श्री जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि भारत और ऑस्ट्रिया की साझेदारी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकार की प्रमुख पहलों को सहयोग देगी।
दिस विजिट कमिंग सून।
प्रधानमंत्री की 2024 में ऑस्ट्रिया यात्रा के बाद और हाल ही में संपन्न हुए भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में हुई इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रिया सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय करने में मदद की है। यह यूरोपीय संघ के साथ समग्र रूप से साझेदारी और इसके सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय जुड़ाव के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फोन पर पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को तत्काल बहाल करने की आवश्यकता पर सहमति जताई। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। तमिलनाडु में AIADMK महासचिव इडप्पडी के पलनीसामी ने कोयम्बटूर में प्रचार किया। डीएमके प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र पर राज्यों के अधिकारों को नकारने का आरोप लगाया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बढ़ते तापमान की परवाह किए बिना नेता मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। YouTube लाइव के जरिए युवा अपने नेताओं की एक झलक पाने के लिए उत्सुक हैं। सोशल मीडिया पर पार्टियां लगातार अपने अपने दलों का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। आकर्षक और जोश भरी धुनें तथा रंगीन नृत्य प्रचार गीतों के साथ मिलकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर रहे हैं। चुनाव प्रचार समाप्त होने में केवल 5 दिन बचे हैं और तमिलनाडु में उत्साह जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
आकाशवाणी समाचार के विधानसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल श्रृंखला में आज बात पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में स्थित विधानसभा क्षेत्र फलाकाटा की।
अलीपुर द्वार जिले की फलाकाटा विधानसभा सीट पर पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा। इस चुनाव में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने दीपक बर्मन को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष चंद्र रॉय हैं। CPIM के उम्मीदवार कमल किशोर रॉय हैं। कांग्रेस ने अक्षय कुमार बर्मन को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा नेता अमित शाह ने रायगंज में अपने चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर बंगाल में IIT, IIM, एम्स, कैंसर अस्पताल, खेल विश्वविद्यालय और जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने पर जोर दिया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और रायलसीमा में अगले 2 दिन लू चलने की आशंका व्यक्त की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत में भी कल इसी तरह की स्थिति रहेगी। अगले 2 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम, माहे, कोंकण, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका है। मुंबई में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 163 रन बना लिए थे। अहमदाबाद में कल गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने सामने होगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज कारोबार के अंत में 123 अंक घटकर 77,989 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 35 अंक कम होकर 24,197 दर्ज हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 18 पैसे मजबूत होकर 93.20 रुपए पर बंद हुआ।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण नारी शक्ति का अधिकार। विपक्षी दलों से ऐतिहासिक कानून को राजनीतिक रंग न देने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, परिसीमन के बाद किसी भी क्षेत्र की सीट कम नहीं होंगी। दक्षिणी राज्यों को 66 लोकसभा सीट मिलेंगी। 2027 की जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज से मकान सूचीकरण और गणना शुरू। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में अगले 2 दिन लू चलने की आशंका। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।